ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक् दर्शन चरण गुण जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराय। हम यहाँ कर्णानियोग के आधार से पांच भावों की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने पहले गुणस्थान से आठवें गुणस्थान तक कौन कौन से मूल भाव होते हैं और कौन कौन से उत्तर भाव होते हैं उसकी चर्चा की। मूल भाव तो पांच है और उत्तर भाव सभी मिलकर 53 है। औदयिक के हमने 21 देखे थे, शावशमी के 18 देखे थे, फिर पारिणामिक के 3 देखे, औपशमिक के 2 देखे और क्षायिक भाव 9। इस तरह से उनकी टोटल हमने 53 देखी है और क्रम से हर एक गुणस्थान में हमने उसको कितने कितने होते हैं उसकी भी चर्चा की थी। अब कल हम 9वें गुणस्थान तक आए थे और 9वें गुणस्थान की वहां चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी। तो 9वें गुणस्थान में क्या होता है उसकी पहले हम चर्चा करेंगे, तो उसमें भाव कैसे कितने हो सकते हैं उसकी बात आपके ख्याल में आ जाएगी। अभी अपना जो विषय हो चुका उसमें कोई प्रश्न है तो पूछना 8वें गुणस्थान तक, ताकि मैं फिर अभी 9वें गुणस्थान के पांच भाग कौन कौन से हैं और क्यों हैं उसको समझाऊंगी। अभी जितना हो चुका है उसमें कोई आपको प्रश्न है क्या? हाँ चेतना बेन, बाद में तो बहुत प्रश्न उठते हैं। अच्छा है, तो हम बार बार मैं आपको पूछूंगी क्या प्रश्न है, तो आपको कोई प्रश्न नहीं उठेगा। देखिए अभी हम देखते हैं यहाँ 9वें गुणस्थान की बात हम करेंगे। 9वें गुणस्थान के पांच भाग होते हैं। ये पांच भाग कौन से कर्मों का उदय या बंद जो कुछ है चल रहा है उसकी अपेक्षा से यहाँ 9वें गुणस्थान के पांच भी या भाग बताए जाते हैं। पहला भाग है उसको कहते हैं सवेद भाग, यानी वहां वेदों का उदय चल रहा है। अभी यहां हमारी जो बात चल रही है वो नाना जीव यानी अनेक जीवों की अपेक्षा हम देख रहे हैं। किसी जीव को पुरुष वेद का उदय होगा, किसी जीव को स्त्री वेद का उदय होगा, किसी जीव को नपुसक वेद का उदय होगा। अब यहां जो वेदों की बात चल रही है वह भाव वेदों की बात चल रही है। 9वां गुणस्थान यानी मुनिराजों की बात चल रही है, तो मुनिराज यानी द्रव्य से यानी शरीर की अपेक्षा से वो पुरुष ही होंगे। फिर भी जन्म से जो वेद चलता है, जिसका उदय चलता है, उसी का उदय चलता रहता है। ऐसे उनके परिणाम कोई मलिन नहीं होते हैं या कोई उनकी क्रिया में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान से ही उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया हुआ है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ना उनके, और मुनियों के भी ब्रह्मचर्य महाव्रत है, तो ऐसी कोई उनके भावों में कलुषता नहीं है, फिर भी वेद का उदय चलता रहता है, नौवे गुणस्थान के प्रथम भाग तक उदय चलता है, इसलिए उसको कहते हैं सवेद भाग, वेद सहित भाग। तो किसी जीव को पुरुष वेद का उदय है, किसी जीव को स्त्री वेद का उदय है, किसी जीव को नपुसक वेद का उदय है। इस भाग के आगे उदय मिट जाता है, इसके आगे उदय नहीं है। तो ये जो हमने पांच भेद यहां दिखाए हैं नौवे गुणस्थान के, जब नौवा गुणस्थान प्रारंभ होता है तो शुरू में किसी एक वेद का उदय है, एक जीव की अपेक्षा एक जीव को किसी एक का उदय होगा और किसी एक कषाय का उदय। हमेशा हम देखते हैं चार कषायों में से क्रोध मान माया लोभ, अब यहां तो केवल संज्वलन ही बाकी है, तो संज्वलन चार बाकी है, अनेक जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो किसी को क्रोध का उदय है, किसी को मान का है, किसी को माया का है, किसी को लोभ का, एक का ही उदय है, बंध चारों का है। वेद भी किसी के पुरुष वेद का उदय है, किसी के स्त्री वेद का उदय है, किसी के नपुसक वेद का उदय है, परंतु बंध एकमात्र पुरुष वेद का ही चल रहा है। ये दूसरे गुणस्थान के आगे एक पुरुष वेद का ही बंद रहता है, उदय किसी का भी क्यों ना हो। तो ये पहला जो भाग है सवेद भाग, उसमें अनेक जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो तीन वेदों में से तीनों वेद है ना, अनेक जीवों की अपेक्षा तीनों वेद है और अनेक जीवों की अपेक्षा चार कषाय भी है। दूसरे भाग में जाता है तो वेद का उदय भी मिट जाए और वेद का बंध भी मिट जाता है। अब यहां इसको कहते दूसरे भाग को कहते क्रोध वेदक काल। यहां पर चारों कषाय का उदय है अनेक जीवों की अपेक्षा, एक जीव को किसी एक का उदय है, किसी को क्रोध का, किसी को मान का, किसी को माया का, किसी को लोभ का, और बंध भी सभी जीवों को चारों संज्वलन का हो रहा है। क्रोध वेदक काल में चारों संज्वलन कषाय जो क्रोध मान माया लोग चारों का बंध हो रहा है। देखिए लिखा तो है क्रोध वेदक काल, परंतु हरेक को क्रोध का ही उदय होगा ऐसी बात नहीं है, चार में से किसी का उदय है और बंध भी चारों का है। अब जब तीसरे भाग में जीव आता है, तीसरे भाग में कुछ काल बीत जाता है नौवे गुणस्थान का, तो उसको कहते हैं मान वेदक काल। दूसरे भाग के आगे अभी क्रोध का उदय भी नहीं होगा और बंध भी नहीं होगा। अब उदय तो मान माया और लोभ में से किसी एक का होगा और बंध भी यहां तीन हो गए, अभी क्रोध का बंध यहां रुक जाएगा। जो पहले बांधा हुआ था ना अंतिम समय तक क्रोध का बंध हुआ था, दूसरे भाग के अंतिम समय तक संज्वलन क्रोध भी बंधा था, अंतिम समय में बंधा हुआ इमीडिएट तो वो तो अंदर पड़ा रहेगा क्रोध रूप से, तो मान रूप टर्न हो जाएगा वो बाद में, मान रूप होकर भी उदय में आ सकता है उसको, या पड़ा रहेगा अंदर। तो यह है मान वेदक काल, अभी यहां क्रोध का बंधन नहीं होगा, उदय तो नहीं है। तो यहां तीन ही कषाय है मान माया और लोभ, तीन में से एक का है ना, तो अनेक जीवों की अपेक्षा तीनों का उदय। जब चौथा माया वेदक काल होता है उदय तीन में से एक का, बंध तीनों का, ये हमें पहले भी देखा था ना, उदय एक का होगा और बंध चार का होगा। अब यहां क्रोध का बंध मिट जाएगा इसमें, क्योंकि अभी क्रोध का उदय और बंध यहां तक ही है, इसके आगे क्रोध का उदय नहीं है। तो यहां उदय एक का और बंध तीन का, मानव मानव माया वेदक काल चालू हो जाएगा, तभी माया या लोभ दो का ही उदय, दो में से किसी एक का और बंध दो का। उसके बाद ये लोभ वेदक काल चालू होता है, लोग में वेदक काल में क्या होता है, ये तो बादर लोग की बात चल रही है ना, यहाँ बादर लोग ही है, उदय बादर लोग का है, परंतु अंदर जो परमाणु पड़े हैं वो सूक्ष्म लोक रूप से होते रहते हैं, वो कार्य तो वहां चल रहा है उसी समय, परंतु यहाँ लोक का उदय है और लोक का ही बंद चल रहा है। ये नौवे गुणस्थान का पांचवा भाग है। तो नौवे गुणस्थान में पांच भाग होते हैं, पहले भाग में वेद भी है और कषाय भी है, दूसरे भाग में चार कषाय है, तीसरे भाग में तीन कषाय है, चौथे भाग में दो कषाय है और पांचवें भाग में एक लोक कषाय ही है। हाँ, ये पांच भाग कषाय उनके अनुसार, वेद और कषाय इसके ऊपर है पांच भाग, वेद प्लस कषाय। तीन वेद है ना, किसी जीव को पुरुष वेद का उदय है, तो जिसको जिस वेद का उदय है वो पहले भाग के अंत तक ही है। हाँ जीव, पहले भाग तक ही वेद का उदय भी है और बंद भी है, बाद में बंद भी नहीं उदय भी नहीं, उसको कहते हैं अपगत वेदी। हमने अपगत राध सुना ना सुबह, अरे वारे वाह, ये तो कॉमन सेंस है ना, अपगत यानी निकल गया है जिसका, अपगत राग अभी हमने सुना समय सार में, तो समय सार में तो अपगत का अर्थ समझता है और कर्णाड योग में नहीं समझता है। अपगत वेद या उसको अवेद भी कहेंगे, अवेद भाग हो गए ना, वेद निकल गया, वेद नहीं रहा। तो इस तरह से हमने नौवे गुणस्थान के पांच भेद देखे। अभी इसमें हमको वो सारे ये भाव लगाने हैं। नहीं, आपका ऐसा प्रश्न है, अभी ऐसा है ना, दो श्रेणी अलग अलग है, एक तो उपशम श्रेणी है और एक शपक श्रेणी है। उपशम श्रेणी में ये जो कर्म है उनका उपशम होते होते जीव ऊपर चला जाता है, तो क्रोध, हाँ हाँ, तो उसमें अभी क्रोध का उपशम हो गया, परंतु अभी लास्ट मोमेंट में जो क्रोध का बंद हो गया होगा, अभी उसका उपशम होने में टाइम लगेगा, तो वो थोड़े काल के बाद हो जाता है। अब जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है वो क्या होता है, कर्मों का क्षय होता है, तो क्षय होता है क्या अर्थ क्या है, विसंयोजन नहीं कहते उसको, हाँ किसमें पलटेगा अभी, नहीं नहीं नहीं, क्रोध अभी इसको कहते हैं, वो उसका एक ही वन वे ट्रैफिक होता है, सारे क्रोध है वो मान रूप ही हो जाते हैं, क्रोध के परमाणु मान रूप होकर क्रोध रूप से नष्ट हो जाना, उसको कहते हैं क्रोध कर्म का क्षय हो गया। फिर मान का वेदक काल चलेगा, तो उसमें मान का उदय भी चलेगा और उसी समय मान के परमाणु सारे वो माया रूप होते रहेंगे, अंतिम मोमेंट में अंतिम समय में जो कुछ नया बंध हुआ होगा, नया बंध है ना लास्ट, देखो बंधने के बाद एक आवली तो बंधावली कहलाती है, उसके बाद और एक आवली तक उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, दो आवली के बाद उसका क्षय करेगा या जो कुछ, हाँ ऐसा ही है। तो इसलिए यहां जो लास्ट में जो बंधा था मान, जब मान का उदय है तब तक तो मान के सारे परमाणु माया रूप होते गए, अभी अंतिम जो आवली में जो बंधे हैं उसको एक आवली बीच में चली जाएगी और दो आवली मैक्सिमम वहां बीत जाएगी, उसके बाद उसका वो पलटने का कार्य हो जाएगा, यानी अगले अगले भाग में चला जाता है, तो पहले में जो कुछ बचे कुचे है उसका भी वो अगले कषाय रूप होता है। क्रोध है वो मान रूप ही होगा, मान है वो माया रूप ही होगा, माया है वो लोभ रूप ही होगा, लोभ कहाँ जाएगा, हाँ संजोलन में ये बात चल रही है, हाँ बादर में से सूक्ष्म हो जाएगा और फिर सूक्ष्म रूप से वो उदय में भी आएगा और वो नष्ट भी हो जाएगा उदय में। बंद चारों का क्रोध वेदक काल में, क्रोध का उदय और बंधचारों का, और उसी समय क्रोध में से माया रूप टर्न होने का कार्य चल रहा है, क्योंकि सत्ता में तो देखिए उदय तो अभी संज्वलन का है, परंतु सत्ता में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान भी है, ख्याल है ना। तो सत्ता में पड़े हुए अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोध कर्म जो है वो सारे संज्वलन मान रूप हो रहे हैं। आपका प्रश्न है ना।
हाँ,
तो उसमें तो ऐसा ही है, वो सजातीय प्रकृति है ना, सजातीय प्रकृति है, चारित्र मोहनी है, संज्वलनी है, तो वो तो आपस में उसका ऐसा ही, और इसको उसी क्रम से होगा, यानी क्रोध है वो अभी लोभ रूप नहीं होगा। जब अब तक जो अनिवृत्तिकरण के पहले पहले कोई संक्रमण होता है तो कोई भी किसी में भी संक्रमण होगा, लोभ भी क्रोध रूप हो सकता है, क्रोध मान रूप हो सकता है, वो माया आपस में संक्रमण हो सकता है। अभी यहां अनिवृत्तिकरण में आता है तो उसको कहते हैं आनुपूर्वी संक्रमण, वो तो विशिष्ट क्रम से उसका संक्रमण होगा, आगे पीछे ऐसे उलट पुलट नहीं होगा। क्रोध को मान में ही, मान को माया में ही, माया को लोभ में ही ऐसा परिवर्तन होगा उसका। तो ये नौवे गुणस्थान में कार्य होता है और इसी रूप से वो क्षय हो जाता है उसका, सारे लोभ रूप हो जाएंगे। और अकेला ही लोभ रूप होता है ऐसा नहीं है, ये हर समय उसका अनुभाग बहुत कम होता चला जाता है, अत्यंत हीन होता है। अभी उसके भी अलग अलग नाम, ये परिणाम विशुद्धि हो रही ना, विशुद्धि बहुत बढ़ती है तो उसके कारण इन सब का अनुभाग भी घट रहा है, बहुत घट रहा है। ऐसा कुछ नहीं उसमें लेना है, क्योंकि उसमें भी क्या है, वो बहुत बहुत ही विस्तार है उसमें। नौवा गुणस्थान का विस्तार आप समझेंगे तो लब्धिसार के 150 पेजेस है, और उसमें बहुत सारे विधि होते हैं, प्रोसेसेस। अभी वो तो सब यहां लेना संभव नहीं है, उसके लिए 6 महीने भी कम है, इतना उसका डिटेल है। हाँ, बादर लोग है, वहां बंद भी लोग का ही है। हाँ, बंद भी है, उदय भी है, उसी समय उसका सूक्ष्म होने का कार्य चल रहा है। हाँ, बंद बादर का ही होता है, नहीं उदय में 10वें में आएगा, परंतु अंदर जो बादल लोक के अन्य भी परमाणु पड़े हैं वो सूक्ष्म रूप हो रहे हैं। अभी इसके लिए तो बहुत ही विस्तार से जरूरत है, अभी हम यहीं रुकते हैं, क्योंकि जैसे हमने प्रथमोक्षम सम्यक्तो में जैसा अंतर देखा था, गैप होता है, वैसे यहां भी चारित्र मोहनी में गैप हो जाता है, और फिर वो ऊपर के गैप के ऊपर के परमाणु नीचे नीचे आते रहते हैं और उसका उदय होता होता जाता है। ये बहुत विस्तार का अलग ही विषय है, हम इतने ही उसके भाग है इतना देखेंगे, ख्याल है ना। क्योंकि हमें तो जिज्ञासा बहुत होती है नया विषय समझने की, परंतु अपना ये विषय रह जाएगा और ये हम आगे बढ़ेंगे, तो हम तो इतने 5 भाग होते हैं। क्यों नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, वहां ये अपकर्षण तो वहां चलता ही रहता है, स्थिति का घटना तो निरंतर चलता है। अभी यहां हम बात ये करेंगे, नौवे गुणस्थान के जो हमने 5 भेद देखे थे उसमें हमको भावों को लगाना है। हमने कल अपूर्वकरण के भाव देखे थे, पहले हम अपूर्वकरण के याद करेंगे ताकि फिर अनिवृत्तिकरण में कहां क्या भेद होता है उसको देखेंगे। कल हमने अपूर्वकरण के देखे थे, जरा फिर देखते हैं अपूर्वकरण गुणस्थान कौन से गति में होगा, मनुष्य गति, यानी गति औदयिक में एक ही भाव देना। कषाय 4 है, वेद 3 है, लेशा 1 शुक्ल लेशा, श्रेणी में एक ही शुक्ल लेशा होती है, कितने हुआ गिनना। अभी मिथ्या तो नहीं है, असंयम नहीं है, अज्ञान है कि नहीं, ये औदयिक अज्ञान की बात चल रही है, ये कुज्ञान वाले अज्ञान की बात नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान भी नहीं है वहां, जो कुछ है तो यह औदयिक अज्ञान है और असिद्धत्व भी है, तो कितने हुए 11। क्षौपशमिक भाव हमने कितने देखे थे, ज्ञान चारों हो सकते हैं ना, किसी जीव को मन परे ज्ञान भी होगा, अवधि ज्ञान भी होगा, तो ज्ञान चार, दर्शन तीन और दानादि पांच, उसके नीचे के कुछ नहीं होंगे, क्योंकि क्षोक्षण सम्यक तो नहीं है श्रेणी में, संयम असंयम तो पांचवे में होता है और सराग चारित्र छठे सातवे में होता है, तो ये बारह हो गए क्षोक्षमिक भाव। आठवें गुणस्थान की बात चले, पारिणामिक भाव जीवत्व और भव्यत्व, औपशमिक भाव हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, उपशम श्रेणी वाले में औपशमिक चारित्र है और उपशम सम्यक, और क्षायिक सम्यक्व के साथ भी कोई जाएगा तो क्षायिक सम्यक्व है और क्षपक श्रेणी वाले को क्षायिक चारित्र भी। इस तरह से ये हमने दो और दो देखे थे, यहां तक समझ में है ना? अभी हम नौवे गुणस्थान पर घटित करेंगे। अब नौवे गुण, अभी तो ये आसान हो जाएगा, पांच भाग हमने यहां लिखे, पहले में वेद भी है और कषाय भी है, तो आठवें गुणस्थान से क्या अंतर हुआ यहां? पहले भाग में क्या अंतर पड़ेगा कि आठवें जैसा ही है? हाँ, आठवें जैसा ही है, यहां का पहला भाग आठवें जैसे ही है, क्योंकि उसमें से कुछ कम नहीं हुआ उसका, ख्याल है ना? बराबर, सप्तमी भाव भी उतने ही रहेंगे, बाकी भी उतने ही रहेंगे। तो अभी हम दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में कषाय कितने हैं? चार, और वेद अभी एक भी नहीं है, अभी वेद निकल गए ना, तो सभी जीवों की अपेक्षा हमने तीन वेद देखे थे, तो तीन निकल गए उसमें से, तीन वेद निकल गए, बाकी तो सब वैसा ही है, तो ग्यारह हमें पहले देखे, तो अभी आठ रह जाएंगे, औदयिक भाव आठ हो गए, क्षौक्षमिक भाव उतने ही रहेंगे, पारिणामिक औपशमिक और शायिक ये भाव बाकी सब उतने ही रहेंगे। ये ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं तो हम इसको फिर देखो, दूसरे भाग में वेद नहीं है, वेद हमने कितने पकड़े हुए हैं? तीन, ये अनेक जीवों की अपेक्षा है ना, तो तीनों ही वेदों को हम निकाल दिया, औदयिक भाव में से वेद को निकाल दिया, गति औदयिक भाव एक है, चार कषाय है, फिर लेशा एक है, और अज्ञान और असिद्धत्व है, बराबर आठ हो गए ना? हाँ, दूसरे भाग में आठ। अब तीसरे भाग में कषाय कितने देखे हमने? तीन कषाय, तो अभी क्रम से एक एक कषाय को ही घटाना है, बेन ख्याल में आता है? देखो, पहले भाग में वेद भी थे, तीन वेद, चार कषाय और बाकी एक गति औदयिक भाव, तो वो हमने आठवें गुणस्थान में ग्यारह गिने थे, ग्यारह औदयिक भाव गिने थे, उसमें से तीन वेद कम कर दिए थे, तो आठ रह गए। दूसरे भाग में वेद तीनों निकल गया, ये अभी एक कषाय गया, क्रोध कषाय गया, तो सात औदयिक भाव रहेगी, बराबर ना? अभी क्रम से एक एक भाग में हम एक एक कषाय को घटाएंगे, तो दूसरे भाग में कितने हुए? सात हुए ना, सात औदयिक भाव, बाकी क्षौक्षमिक और वो भाव वैसे ही रहेगा। तीसरे भाग में छह, चौथे भाग में और पांचवे भाग में घोटाला कर रहे हैं, आठ सात छ और पांच, पहले में ग्यारह थे, उल्टा सब, पहले में ग्यारह, दूसरे में आठ, तीसरे में सात, चौथे में छ, पांचवे में पांच, औदयिक भाव पांच, बराबर। अभी यह जीव ग्यारहवें गुणस्थान में गया, सॉरी दसवें में, अभी बीच में एक दसवां है ना, तो दसवें गुणस्थान में है, तो वहां उसमें से क्या क्या कम होगा? कषाय एक ही है, पहले बादर लोग था, अभी सूक्ष्म लोग हो जाएगा, परंतु कषाय तो है वहां पर, तो एक कषाय को गिनेंगे हम, है ना? एक गति, एक गति, एक कषाय, एक लेशा, अज्ञान और असंयम, पांच हो जाएगी। बाकी भाव तो उतने ही रहेंगे, शोक श्रमिक 12 ही रहेंगे और आगे भी दो दो देखेंगे। दसवें में नहीं वितरागी कहते, ग्यारहवें को कहते। दसवें में सूक्ष्म लोक का उदय है ना, अब ग्यारहवां गुणस्थान है। अभी ग्यारहवें गुणस्थान में क्या क्या है, गति कौन सी, मनुष्य गति, कषाय कितने हैं, एक भी नहीं है, ख्याल है ना, अभी कषाय नहीं है कोई। सूक्ष्म लोक दसवें में था, अभी हम ग्यारहवें की बात करते हैं, उसमें कोई कषाय का उदय नहीं है, सभी कषाय उपशमित है। हमें उपशम श्रेणी की अभी बात करेंगे ना, ग्यारहवां गुणस्थान है, सभी उपशमित है। तो अरिहंत भगवान जैसे वितरागता है, पूर्ण वितराग। हाँ तो एक गति, एक लेशा, अज्ञान और असिद्धत्व, चार हुए। और क्षौपशमिक भाव उतने ही रहेंगे, पारिणामिक उतने ही रहेंगे, औषमिक कितने रहेंगे, औषमिक दो। और क्षायिक, क्षायिक होगा कि नहीं होगा, क्षायिक सम्यक भी वाला होगा, तो क्षायिक सम्यक भी है, क्षायिक चारित्र नहीं है, क्षायिक सम्यक है। तो क्षायिक भाव में एक क्षायिक सम्यक को लेना, किसी जीव को होगा ना क्षायिक सम्यक भी, उपशम श्रेणी मानने वाला। अब बारहवें गुणस्थान की बात करेंगे। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो लेशा किसको कहते हैं, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। तो भाई साहब का प्रश्न है, अभी तो जीव के कषाय एक भी नहीं है तो आप लेशा क्यों कहते हो, तो योग है। और भूतपूर्व न्याय से भी कहते हैं या उपचार से, ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें तीनों गुणस्थानों में एक शुक्ल लेशा कहने में आती है। केवली को भी, संयोग केवली को, अयोग वाले को नहीं। चौदहवे वाले को लेशा नहीं है, योग भी नहीं ना, तो लेशा भी नहीं होगी। परंतु ग्यारहवा बारहवा और तेरहवा कषाय के अभाव में भी योग है, इसलिए वहां शुक्ल लेशा कहने में आती है। ख्याल है ना, जैसे अरिहंत भगवान है, उनके तो मन का कोई कार्य नहीं है, फिर भी मनोयोग वहां कहने में आता है तेरवे वाले को। ऐसे यहां भी उपचार से लेशा वो कहने में आती है। ऐसा ही प्रश्न उठेगा तो बरो जरूर पूछना, क्योंकि ऐसे उसका क्यों ऐसा, वो हमें उसका उत्तर भी चाहिए, क्यों कहने में आता है। एक तेरवे वाले अरिहंत, अरिहंत भी दो है, तेरवे भगवान, तेरवे गुणस्थान वाले अरिहंत, चौदहवे वाले नहीं, चौदहवे अयोगी है, अयोगी केवली। चौदहवे गुणस्थान का नाम क्या है, अयोग केवली। थोड़ा ही टाइम है सब, थोड़े ही टाइम वाले हैं वो। तेरहवा गुणस्थान छोटा बड़ा हो सकता है अलग अलग, बाकी एक गुणस्थान तो छोटे छोटे अंतर्मूर्ति ही है, श्रेणी मानते हैं तो श्रेणी के गुणस्थान छोटे छोटे ही है। तेरहवे का गुणस्थान अभी जिसका लंबी आयु बाकी है, ऐसा होता ना कोई जीव, आठवें साल के बाद ये सारे क्षपक श्रेणी ने संयम भी अंगीकार करेगा, क्षपक श्रेणी भी चढ़ेगा, तेरहवा गुणस्थान भी प्राप्त हुआ आठ वर्ष और कुछ अंतर्मूर्त में, और फिर करोड़ पूर्व की आयु होगी, तो अंतिम चौदहवें का काल अंत में रहेगा, फिर पूरी लाइफ टाइम उसकी तेरहवा गुणस्थान वाली शुक्ल लक्ष्य कही जाती है। शुक्ल ध्यान का जो तीसरा और चौथा पाया है वो तो तेरहवें के अंत में होता है, तीसरा पाया। अब ये बारहवें गुणस्थान की बात हम देख रहे हैं, ग्यारहवें की बात करी ना हमने, अब बारहवें गुणस्थान में गति, एक मनुष्य गति, उसमें से क्या होगा, अभी कषाय नहीं, वेद नहीं, लेशा, एक शुक्ल लेशा, अभी हमने देखी ना, अज्ञान भी है और असिद्धत्व भी है। असिद्धत्व चौदहवें गुणस्थान तक है, जब तक कर्म एक भी बाकी है, अभी वहां तो चार आघातियां बाकी है ना, तो चौदहवें गुणस्थान वाले को भी असिद्धत्व कहेंगे, अज्ञान है कि नहीं है? अभी हम बारहवा गुणस्थान देख रहे हैं। सुनो सुनो, बारहवें गुणस्थान में केवल ज्ञान है क्या?
नहीं।
तो अज्ञान है, हाँ चार है। जैसे ग्यारहवें में देखे थे औदयिक भाव, वैसे ही चार है। सौक्षमिक भाव चार, ज्ञान तीन, दर्शन पांच, दान आदि बारह हो गए। पारिणामिक भाव दो है। औक्षमिक भाव वो बारहवें गुणस्थान में औक्षमिक भाव नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्मों का क्षय करते करते जीव आया है। यहाँ तो क्षायिक भाव ही हो गए। क्षायिक भाव कितने हो गए आप बोलो? हाँ, क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र। बारहवें गुणस्थान की बात चल रही है। तेरहवें गुणस्थान में वो दर्शन वगैरह वो आएगा, शायद दर्शन की बात क्या है। अभी बारहवा गुणस्थान है ना, अब तेरहवा गुणस्थान। हाँ, कौन ट्राई करना चाहते हैं? हाँ, तीन कौन कौन से? गति, एक लेशा, असिद्ध। बहुत अच्छा, देखो अभी अज्ञान मिट गया है। तेरहवें गुणस्थान में जो औदयिक अज्ञान था वो मिट गया अभी, है ना? तो ये अज्ञान मिट गया, असिद्धत्व रह गया। अब मेरा सवाल है, क्षायोक्षमिक भाव में से कितने भाव रहेंगे? एक ही ज्ञान। आप क्या कहते हैं पीछे यहाँ से? सुनो सुनो अभी सुनो, अभी केवली भगवान को एक भी क्षायोक्षमिक भाव नहीं है। देखो ना, अभी केवल ज्ञानी हो गए। अभी मुझे मूल भाव देखिए, अभी उत्तर भाव बाद में देखेंगे। तेरहवें गुणस्थान वाले को कौन कौन से मूल भाव हो गए? औदयिक है कि नहीं है? है। क्षायोक्षमिक है कि नहीं?
नहीं है।
पारिणामिक है? औक्षमिक नहीं है। शाही तीन कौन से? अच्छा, मूल भाव बता रहे हैं। तो अभी हमने देखे औदयिक में तीन देखे, गति औदयिक, फिर शुक्ल लेशा और असिद्धत्व, तीन औदयिक भाव। क्षायोक्षमिक भाव एक भी नहीं। अभी देखो, हमने पहले बारहवें गुणस्थान में चार ज्ञान देखे थे, क्षायोक्षमिक थे, है ना? अभी तो वो उनका वो सब मिटकर यहाँ क्षायिक ज्ञान प्रकट होने वाला, तो हम क्षायिक भाव में ले लेंगे। दर्शन भी वहां तीन दर्शन थे, वो भी यहाँ क्षायिक दर्शन हो जाएगा, केवल दर्शन। दानादि वहां पांच लिए थे, वो दानादि पांच है, वो यहाँ क्षायिक दानादि हो जाएंगे। तो क्षायोक्षमिक भाव कोई भी नहीं रहेगा और उनके क्षायिक भाव हो जाएगी सर। पारिणामिक भाव कौन से रहेंगे? हाँ, अभी भी भोग्यत्व है। चौदहवें गुणस्थान तक हम भोग्यत्व को गिनेंगे, सिद्धों में भोग्यत्व को नहीं गिनेंगे। अब चौदहवें गुणस्थान, हाँ, क्षायिक भाव कितने हैं? क्षायोक्षमिक एक भी नहीं है, औक्षमिक भी नहीं है। अभी औक्षम से कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, औक्षमिक भाव किसके होता है? जिसने अंतर्मूर्त तक वो उपशम किया है, जो उपशम श्रेणी में होता है या ग्यारहवें गुणस्थान में होता है। अब ये तो क्षपक श्रेणी चढ़कर तेरहवें गुणस्थान में आए हुए, तो यहाँ औक्षमिक भाव का कोई कार्य नहीं है अभी। हाँ, क्षौक्षमिक भी नहीं, औक्षमिक भी नहीं। अब ये चौदहवा गुणस्थान देखना है हमें। चौदहवा गुणस्थान, इसका नाम क्या है? अयोग केवली। तो उनमें क्या नहीं होगा? अयोगी में सयोगी से योग चला गया, यानी वहां लेशा भी नहीं होगी। तेरहवे में हमने एक शुक्ल लेशा कही थी, अब यहाँ लेशा नहीं होगी, इसको अलेश्य कहेंगे। गति है कि नहीं है? हाँ, मनुष्य गति है, मनुष्य गति भी है और असिद्धत्व भी तो दो रहेगी। इसको कहते गति औदयिक भाव उनके है, मनुष्य है ना वे, तो भी वो गति औदयिक भाव एक है और असिद्धत्व, ये दो औदयिक भाव है उनके। सार्वक्षमिक भाव जीरो, पारिणामिक भाव दो, औपशमिक भाव नहीं है, और क्षायिक भाव जो हमने तेरहवे देखे थे ना वो यहां भी रहेगी। अभी सिद्ध चौदहवे में लेशा नहीं है क्योंकि वहां योग भी मिल गया ना, अयोगी केवल कहते हैं हम उसको। अभी सिद्धों की हाँ बिल्कुल अंतर्मूर्ति, और वो भी कौन सा अई उरुलु इतना बोलने तक तो हाँ हाँ इतने समय में सारा कुछ कार्य होता है, क्योंकि हमने देखे थे आठवां नौवां दसवां ये भी सारे गुणस्थान बहुत छोटे छोटे हैं। इतने से छोटे काल में जीव कितना पुरुषार्थ करके अर्यंत सिद्ध भगवान हो जाता है। शायिक भाव नौ के नौ है। अभी सिद्धों में देखना है, सिद्धों में औदयिक भाव कौन कौन से होंगे? अभी कुछ नहीं है, मनुष्य गति भी अभी छूट गई, अभी उनकी चारों गति में से तो छूट ही गई है ना, और असिद्धत्व जब तक था चौदहवे के अंत तक, क्योंकि वहां तक कर्म का सद्भाव था, अब ये सिद्ध हो गए तो असिद्धत्व मिट गया ना, कोई भी औदयिक भाव नहीं है ना, कोई क्षयोक्षमिक भाव है। पारिणामिक भाव कौन सा रहेगा? एक जीवत्व पारिणामिक भाव है उनके, औक्षमिक भाव भी नहीं है, और क्षायिक भाव एक्चुअली उसमें उसके ग्रुप में बताया उन्होंने, कर्मकांड में जो बात है वहां तो ग्रुप में हुए पांच ही बताते हैं, यानी सम्यक्व ज्ञान दर्शन वीर्य ऐसा ही कहते वो खाली, वो चारित्र नहीं गिनते, उसके बदले वो अनंत सुख गिनते हैं ना वहां पर। हाँ। नहीं परंतु उसमें वो संयम या चारित्र को नहीं लेते सिद्धों में। हाँ। अनंत चतुष्टय तो चार है ना। हाँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चार हो गए। और फिर सम्यक्त्व एक पांचवा, ऐसे वो उसमें गिनते कौन से? नहीं उसको क्षायिक भाव नहीं कहते, वो है तो कर्म का क्षय है, परंतु क्षायिक भाव में उनको नहीं गिनते। हाँ उनके क्षायिक भाव नहीं कहलाते, वो उनके गुण प्रकट हुए ऐसा कहेंगे, उसमें हम ऐसा तो नहीं कहते क्षायिक अवगाहनत्व, क्षायिक सूक्ष्मत्व ऐसा नहीं कहते, वो सूक्ष्मत्व इतना ही कहते। हाँ पांच, हाँ अनंत चतुष्टय और क्षायिक समय को, ऐसे पांच भाव कहने में आते सिद्धों। हाँ वो तो यहाँ तो क्षायिक भाव का अपना प्रकरण चल रहा है ना, जहां जो जिस अपेक्षा से बात है वहां वैसे समझ लेना। तो ये तो हमने ये भावों की चर्चा, हाँ उसको ग्रुप्स में बताया ना हमने, आठ बजे तक। हाँ नहीं 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 फिनिश नहीं कर रहे हैं। अभी अभी विषयांतर मत करना अभी। हाँ। नहीं अभी नहीं, देखो अभी मैं कोई भी एक क्राइटेरिया आपको बताऊं हमें लगाना है। अब नरक गति के भाव हमको लगाना है, नरक गति, नरक गति में औदयिक भाव कितने हैं वो सब अभी नाना जी को ही पहले लगाएंगे ना, पहले अपने अपने सोच लो, नोटबुक में लिख लो अपने अपने, बाद में सब लोग आप एक साथ बोलते हैं ना फिर समझ में नहीं आता। आप सोचो तो सही, नरक गति में कौन कौन से अभी वो आप लिखो। हाँ देखिए हम सोचते हैं नरक गति की बात है तो गति औदयिक भाव एक होगा, कषाय चारों, क्योंकि हम अनेक जीवों की अपेक्षा देख रहे हैं तो कषाय चार। हाँ, नरक गति में कौन सा वेद होता है? नपुसक एक ही वेद होता है, भाव भी और द्रव्य भी नरक गति में एक ही वेद होता है, और देवगति में दो, पुरुष और स्त्री, मनुष्य और तिर्यंचों में तीन तीन वेद होते हैं, ख्याल है ना। तो नरक गति की बात पूछेंगे तो एक नपुसक वेद ही होता है, वहां लेशा तीन। सभी नारकियों, सुनो सुनो, सभी नारकियों की अपेक्षा से तीन लेशा कहेंगे अशुभ, परंतु हर एक नरक की अपनी अपनी होगी, आपस में बात मत करना। आपका प्रश्न ऐसा है, आपका प्रश्न ऐसा है कि जब सम्यक तो होता है तो क्या अशुभ लेशा में होगा? तो हाँ ऐसा ही है, सातवें नरक के नारकी को भी कृष्ण लेशा के परिणाम में सम्यक तो होता है। उसकी जो कोई पहले जो परिणाम तीव्र संकलेश रूप हो गए उसी में उसकी मंदता होगी, क्योंकि हरेक लेशा के असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग भेद होते हैं उसकी डिग्री। तो जो क्योंकि लेशा तो नरक में ऐसा नियम है, लेशा बदलती नहीं है, अलग अलग नरकों की लेशा अलग अलग है। पहले नरक में तो कपोत लेशा ही है, फिर कपोत से वो बीच वालों में नील हो जाएगी, और फिर नीचे कृष्ण लेशा, नीचे ऊपर कपोत लेशा है, बीच में नील है और नीचे कृष्ण लेशा। तो लेशा तो बदलती नहीं है, भले सम्यक तो हो जाए तो भी लेशा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कृष्ण की कृष्ण ही रहेगी। हाँ, तो उन वहां भी हमने इसमें देखा ना पांच लब्धि, इसमें भी लिखा है मैंने, तो वहां की लेशा में जो कुछ है वो संकलेश थोड़े कम हो जाते हैं। कृष्ण लेशा तो सातवें नरक में कोई सम्यक तो प्राप्त करता है, तो उसकी वो तो लेशा में जो तीव्रता थी संकलेश में वो थोड़ी मंद हो जाती, परंतु कृष्ण से नील नहीं हो जाती, तो वहां उसको सम्यक तो होता। हाँ, कृष्ण ही लेशा हो रही, तो ये नरकों में जब सम्यक तो होता है तो उसी उसी लेशा में होता है ना, कपोत कृष्ण और ये सॉरी कपोत नील और कृष्ण। देवों में भी स्वर्गों में अपनी अपनी लेशा फिक्स होती है, हाँ, पीत पद्म और शुक्ल। मनुष्य और तिर्यंचों में छह लेशाएं पाई जाती है, चौथे गुणस्थान वाले को भी छह लेशा पाई जाती है, परंतु जब सम्यक होता है उस काल में उसको शुभ लेशा में होता है, ख्याल है ना। पर सम्यक होने के बाद उसको कृष्ण लेशा तक के परिणाम हो सकते हैं, जैसे काल में नहीं, काल में तो शुभ लेशा है, सम्यक होने के पहले भी शुभ लेशा होती है, परंतु अभी उसको क्योंकि उस विशुद्धि परिणाम है ना, तो वहां उसके शुभ लेशाएं हो जाती है, शुभ लेशा के काल में सम्यक की प्राप्ति होती है उसको, परंतु बाद में क्षोभ समय दृष्टि हो गया वो यक्षायिक भी क्यों ना हो, तो उसको बाद में कृष्ण लेशा तक के परिणाम हो सकते हैं। श्रेणी को भी कपोत मनुष्यों की बात, अभी सर्वार्थ सिद्धि से भी कोई आया, अभी 33 सागर तक शुक्ल लेशा वाला जीव है, क्षायिक समय दृष्टि है, और यहां गर्भ में आया तो एक अंतर्मुहूर्त में वो तो शुक्ल से फिर क्रम से जाता है, पद्म होगा, पीत होगा, कपोत होगा, नील होगा, कृष्ण लेशा तक की भी परिणाम हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब ये जो रामचंद्र ने 6 महीने तक इतना विलाप किया, ये तो उनके परिणाम कैसे, इतने संकलेश रूप हो गए ना, तो चौथे गुणस्थान वालों के तो 6 लेशाएं हो सकती है, उसमें कोई अचरज की बात नहीं। पांचवे गुणस्थान से ऊपर 3 शुभ लेशा ही होती है, और यहां तो अभी हमने सम्यक की अपेक्षा नरकों में देखा, नरक में अपनी अपनी लेशा ही होती है, हो सकती है, जैसे कोई शोक का परिणाम है, तीव्र शोक का परिणाम है, संकलेश परिणाम है, तीव्र भय है, ऐसा हो सकते हैं उसके। हाँ, नरक की अपनी अपनी लेशा कायम रहती है, स्वर्ग में भी अपनी अपनी कायम रहती है, मनुष्य और तिर्यंचों की बदलती रहती है, सब हो सकते हैं उसमें, मंद तीव्र के भी बहुत सारे भेद उसमें हो सकते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सम्यक दर्शन हुआ तो भी छोलेशा हो सकती है उसकी, सम्यक के बाद सम्यक दृष्टि जीव को छोलेशा हो सकती है, उस समय शुभलेशा हो, जिस समय वो सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, सम्यक की प्राप्ति विशुद्धि में होती है, उस समय उसको शुभलेशा है। तो ये हमने नरक गति पर अभी घटित किया था। कौन सा कुछ सवाल है आपके? हाँ नहीं तो अच्छा, नरक गति में क्षावश्रमिक भाव घटित करेंगे। नरक गति में हाँ औदयिक में देखो लेशा हमने कितने देखी, तीन, सभी नरकों की अपेक्षा तीन, मिथ्यात्व है कि नहीं वहां? असंयम, असंयम ही है, आगे के भाव होंगे नहीं। नरकों में चार ही गुणस्थान हो सकते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सारे असंयम ही है। हाँ अज्ञान है, असिद्धत्व है। अब नरकों में शौक्षमिक भाव कौन से घटित हो सके? ज्ञान, आप सुनो जरा, ज्ञान कौन कौन से हो सकते हैं? एक गति, चार कषाय, एक वेद, तीन लेशा, मिथ्या तो असंयम अज्ञान और असित, नीचे के चार ही है, एक नपुसक वेद। नरक में एक नपुसक वेद ही रहता है, भाव से भी और द्रव्य से भी। नरक में एक ही वेद है, सम्यक दृष्टि मरकर जाता है ना, उसके भी वही नपुसक वेद ही रहता है उसमें। नरक में तो वही है एक वेद, दूसरा वेद ही नहीं है। अन्यत्र कहीं जाएगा सम्यक्त्व के साथ, मनुष्य होगा सम्यक्त्व के साथ, तिरंच होगा सम्यक्त्व के साथ, देव में जन्मेगा तो वहां वो पुरुष ही होगा, स्त्री नहीं होगा और नपुसक भी नहीं होगा। परंतु नरक में दूसरा कोई वेद ही नहीं है तो वहां तो नपुसक होगा। भोग भूमि में सम्यक्त्व के साथ जाने वाला जीव वो भी पुरुष होगा, सम्यक्त्व के साथ जाने वाला। हाँ नरक में जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त किया है जिसने, वहां उसकी कृष्ण लेशा ही रहती है। सातवें में सातवें वाला तो कृष्ण होता ही है, छठे में भी कृष्ण लेशा वाले जीव होते हैं ना। अब वो मरकर छठे में से मरकर सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में आ सकते हैं, तो भी वो कृष्ण लेशा के साथ ही मनुष्य में जन्म लेंगे। सातवें नरक का ऐसा नियम है कि वो सम्यक्त्व बहुत, यानी वहां जाने के बाद अंतर्मूर्त में किसी ने सम्यक्त्व प्राप्त किया और फिर 33 सागर में कुछ थोड़ा काल, कम इतना पूरा काल सम्यक्त्व के साथ बिताया, फिर भी मरण के समय नियम से पहले मिथ्यात्व में जाएगा, आयु का बंद करेगा और मरकर तिर्यंच में जाएगा। सातवें में नरक में से जाने वाले का यही नियम है, सम्यक तो छूट जाता है, इतना ही नहीं वहां से वो संगी पंचेन्द्रीय तिर्यंच में ही जन्मेगा, उस भव में भी उसको सम्यक तो नहीं होगा। सातवें नरक में हो सकता है, वहां 33 सागर के कुछ काल कम तक रह सकता है, परंतु वहां से निकलकर यहां उसको नहीं हो सकता। सम्यक तो छूटने का नियम है सातवें नरक के लिए, छूटकर मिथ्यात्व में जाकर मिथ्यात्व में ही मरता है, वहां अन्य कोई पहले एक गुणस्थान, पहला गुणस्थान ही मरने का है उसका, ना कोई दूसरे में मरता है, तीसरे में तो कोई मरता ही नहीं है। तो ये सातवें नरक की बात है, सातवें नरक की बात। अब क्षयोक्षमी भाव हम घटाएंगे। ज्ञान कितने हो सकते हैं सातवें नरक में? ये सातवें नहीं, सब नरक इन जनरल, हम सभी नरकों की बात करें। तीन सम्य दृष्टि हो तो तीन सुज्ञान, और मिथ्या दृष्टि हो तो तीन कुज्ञान यानी अज्ञान कहेंगे, तो तीन तीन छह हो जाएगी। अनेक जीवों की अपेक्षा लगा रहे ना, दर्शन तीन, दानादि पांच, और नीचे वाला क्या क्या लगेगा? हाँ शौक्षम सम्यक तो लगे, संयमासयम होगा कि नहीं होगा? नरक में नहीं होता, नरक में चार ही गुणस्थान हो सकते, चौथे के आगे गुणस्थान ना देव में होते हैं, ना नरक में होते हैं, ना भोग भूमि में होते हैं। भोग भूमि में भी नहीं, कर्म भूमि के मनुष्यों में होते हैं 14 के 14, और तिर्यंचों में होते हैं 5वें गुणस्थान तक। बराबर? हाँ, पांचों होते, सौक्षम है ना। दान देना, ये दूसरे को दान देने की बात नहीं है, जीव के गुणों की बात है ना, सौक्षमिक भावों की बात है ना उसकी। हाँ, जीव के भावों की, परिणामों की। हाँ, निकल सकता है, आप आपस में बोलना नहीं, बे सुनाई नहीं देता। छठे नरक तक के जीव सम्यक्त के साथ वहां से निकलकर कौन सा सम्यक्त होगा उनके? सौक्षमिक ही होगा। शायिक वाला जो है वो पहले नरक में जा सकता है ना, नीचे के नरक में कोई जाते नहीं शायद। और एक नियम ऐसा भी है, जो सम्यक्त के साथ नरक में जाता है वो क्षायिक सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए, कोई वेदक सम्यक्त के साथ नरक में नहीं जाता, कोई वेदक सम्यक्त के साथ भोगभूमि में भी नहीं जाता। पहले नरक ही बन, जैसे श्रेणिक राजा है, शायिक सम्य दृष्टि है, पहले नरक में गया। ऐसे जिसने सम्यक्त होने से पहले तिर्यंच आयु बांधी है और भोगभूमि में जाएगा सम्यक्त के साथ, उसके लिए एक कंडीशन है, वो क्षायिक सम्य दृष्टि होना चाहिए। वेदक सम्यक्त के साथ कोई मरकर भोगभूमि का तिर्यंच नहीं होगा। उपशम सम्यक्त के साथ कोई मरता ही नहीं है, इसलिए उसको अलग रखा। कहां से? छठी नरक से निकलकर मुनि नहीं हो सकता, पांचों गुणस्थान में से। देखो देखो, हमने देखा ना, तीसरे नरक तक से निकलकर तीर्थंकर हो सकता है, चौथे नरक तक से निकलकर के सामान्य केवली हो सकता है, पांचवे से निकलकर मुनि हो सकता है, और छठे से निकलकर पांचवे गुणस्थान तक प्राप्त कर सकता है। सातवें में से तो कोई सम्यक्त के साथ नहीं निकलता और ना ही सम्यक्त प्राप्त करता है अगले भव में। ये बहुत ऐसे नियम है अलग अलग। हाँ, तो बाद में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, जो अभी तीसरे नरक में पड़े हैं कोई जीव और तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? वो वेदक सम्य दृष्टि थे, मरने के पहले मिथ्यात्व में गए, मिथ्यात्व के साथ मरकर दूसरे तीसरे नरक में गए, वहां जाते ही बहुत छोटे अंतर्मुहूर्त में फिर से वेदक सम्यक प्राप्त किया, और जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते आए थे वो वहां भी तीर्थंकर प्रकृति का बंधन चलता रहता है। लेशा से कुछ मतलब नहीं है, मिथ्यात्व अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होगा। हाँ, तीनों ही प्रकार के सम्यक जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं, औपशमिक हो, शौपशमिक हो या क्षायिक हो, वेदक सम्य दृष्टि भी बांधता है। देखो, आपका ऐसा प्रश्न है, अब तीसरे नरक में गए हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब प्रारंभ किया था तब वो तीर्थंकर केवली श्रुति केवली के पाद में शुरू करता है, बाद में उसको वो तीर्थंकरों को उतना ही वो कायम उधर ही रहेगा तो ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ऐसा नहीं है, हर समय बंध रहे है बाद में।
लेकिन कहा ना, जो उसको तीसरे नरक का बंध हुआ है,
अभी जाएगा वहाँ और वहाँ तीर्थंकर प्रकृति बांधता रहेगा पूरी लाइफ टाइम तक।
तो अभी दोबारा
गैप केवल जब तक वो मिथ्यात्व में है,
मिथ्यात्व में है तब
तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी नहीं,
नहीं
नहीं दोबारा नहीं पड़ेगी वहाँ, तो केवली श्रुत केवली होते ही नहीं ना नरक में। वो नहीं 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 वो प्रारंभ जब किया था ना, आपस में प्रश्नोत्तर मत करना, जो कोई प्रश्न है मुझे पूछना। प्रारंभ जब किया था तो तीर्थंकर के पादमूल में किया था, जैसे श्रेणिक राजा को अभी यहाँ महावीर भगवान के वहां उसने प्रारंभ किया था। अब वहां जाने के बाद हर समय वो वहां तीर्थंकर प्रकृति बांध ही रहे, वहां से आएंगे मां के गर्भ में तो भी तीर्थंकर प्रकृति बनती रहेगी, कब तक? आठवें गुणस्थान के अंत तक, और उदय आएगा बाद में तेरहवें गुणस्थान में जाके। किसका? तीसरे नरक से निकलेगा जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है उसकी बात है, अब उसका समय तो कभी नहीं छूटेगा। सामान्य कोई होगा तो वो उसका छूट सकता है, तीर्थंकर प्रकृति वाले की बात है ना, उसका समय तो नहीं छूटेगा। बस एक बार ही छूटा जब नरक के सन्मुख था, फिर कभी नहीं छूटेगा। हाँ, क्षयिक कहाँ है? वो शोषम वाला है, क्षयिक वाला है तो तीसरे में कैसे जाएगा, पहले में जाएगा। कौन से वेदक की? नया प्राप्त किया ना, वहां शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही नया सम्यक तो प्राप्त करते हैं, वेदक सम्यक तो बहुत छोटे अंतर्मुहूर्त में प्राप्त करते हैं, पूरे वहां तभी रहेगी उनका, फिर वो छूटेगा नहीं, उनका निकलने के टाइम भी रहेगा। जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है उसकी बात, मनुष्य हो और वो विग्रह गति में भी रहते हैं। नहीं नहीं, तीर्थंकर प्रकृति मात्र मनुष्य में ही बनती है, और आप कहेंगे जिसने तिर्यंचायु का बंध किया होगा उसका क्या होगा, उसको तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ही नहीं। कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधकर कोई भोग भूमि का तिर्यंच होगा ऐसा भी कभी नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला नरक जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, ना मनुष्य होगा ना तिर्यंच होगा। अभी समय हो गया अपना, महावीर भगवान की इच्छा।